बोलते ध्वनियों ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों ब्रह्ममुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ
ओम शांति, ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग। शिव बाबा हमारा बाप, टीचर और सतगुरु है और इस ज्ञान मार्ग में हमारा तीनों पर अधिकार है। बाप रूप में वर्षा लेने का अधिकार है, टीचर रूप में पढ़ाई पढ़ने का अधिकार है और सतगुरु रूप में गति सदगति करने का अधिकार है। उसके लिए पावन बनना भी अधिकार है। ये सब अधिकार के रूप में हम ज्ञान मार्ग में अनुभव करते हैं और भक्ति मार्ग में क्या अंतर है दोनों में? भक्ति मार्ग में हम मांगते हैं, हे प्रभु सुख शांति दो। यहाँ हम अधिकार रूप में अनुभव करते हैं बाप से, आकर पति से पावत बनाओ, बनाओ करो ये दो। तो ये तो जैसे भिखारी बनाए और यहाँ हम अधिकार से कहते हैं हम ले रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तुम हर बात अधिकार से कहते हो। भक्ति मार्ग में और क्या चीजें और क्या कहते हैं? हे भगवान, हे ईश्वर, ओ गॉड, हर धर्म में ऐसे पुकारते हैं। अभी हम पुकारते नहीं है। क्यों नहीं पुकारते? क्योंकि अधिकार है। अधिकारी पुकारता नहीं है, भिखारी पुकारता है ना, मांगता है ना, सांप दो। और अधिकारी क्या कहता है? मैं लेता हूं। तो यही अंतर है भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में। अभी हम हे भगवान ही कहेंगे, हे शिव बाबा ऐसे भी नहीं कहेंगे। क्या कहते हैं? वाह बाबा, हाँ वाह बाबा। क्या कहते हैं बोलो? हाँ। तो ये अधिकार की निशानी है और अधिकार होने के नाते हम उस नशे में रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं ये नशा भी तब स्थायी रहे जब इतना निश्चय हो। अगर निश्चय ही नहीं है, है नहीं है, पता नहीं पता नहीं, तो फिर नशा नहीं चढ़ेगा। और निश्चय है तो हम नशे से कहते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सदा निश्चय और नशा तुम्हारा कायम रहे। दूसरा प्रश्न पूछते हैं लोग कि आप लोग सफेद ड्रेस क्यों पहनते हो? है ना, हमारे पास यहाँ कई आते, चलो मुरली क्लास में भी बैठते हैं, तो उनके कपड़े थोड़े काले होते हैं या वो डार्क होते हैं। तो कई कहते हैं बहन जी हमको तो लगता है हम जैसे बगुले बैठे हंसों के बीच में, ऐसे भी कहते। तो फिर कहते हमारे पास सफेद ड्रेस तो है नहीं। तो फिर हम कहते कोई बात नहीं, शॉल ओढ़ लो सफेद। तो वो फिर सफेद शॉल ओढ़ के आते हैं, हाथ तो लगे कि भाई ये भी सफेद ड्रेस है। तो ये तो हंसों की निशानी है ना, सफेद एकदम हंस सफेद दिखाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, हम कई पूछते हैं तो हम क्या कहते हैं? हमारा यूनिफॉर्म है। लेकिन यूनिफॉर्म से भी बढ़कर क्या है? क्यों हम सफेद ड्रेस पहनते हैं? वो आज बाबा ने बताया। सबसे बड़ी बात कि हम तो जीते जी मर चुके हैं। जो डेड बॉडी पर क्या रखते हैं? सफेद कपड़ा रखते हैं, रंगीन थोड़ी रखते हैं। तो हम जीते जी मर चुके हैं तो इसीलिए सफेद पहनते हैं। अब ये किसी को कहो तो उसको अजीब लगे, लेकिन उनको सहज रूप से कहते हैं ये हमारा यूनिफॉर्म है। तो लोग कहते ठीक है, यूनिफॉर्म तो सफेद होता ही है, ऐसे देखी नहीं होता है। तो बहुत सी बातें हैं आज बाबा की, सुनते हैं सतगुरु के महावाक्य। आज 15 जनवरी 2026 है, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा ये शब्द नहीं निकलना चाहिए। चलो हे ईश्वर नहीं कहेंगे तो कहेंगे हे बाबा, ओ बाबा। हाँ बाबा कहते, ऐसे भी नहीं निकलना चाहिए अक्षर। ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। प्रश्न है, तुम बच्चे सफेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? ये किस बात का प्रतीक है? उत्तर है, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो। तो हम सब यहाँ कौन बैठे हैं, जीते जी मरे हुए हैं, ऐसे ही कहेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफेद ड्रेस पसंद है। ये सफेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मर जीवा बने हो। कई जवान जवान भी आते कहते मुझे मर जीवा भोग लगाना है। अरे भाई तुमको क्यों मर जीवा भोग लगाना है, अभी तो तुमको बाबा की बहुत सेवा करनी है। तो कहा नहीं, मर जीवा बन के सेवा करेंगे। अब मर गए तो फिर क्या सेवा करेंगे, तो मर जीवा अभी नहीं। तो इसलिए ऐसे यहाँ नहीं लगाते, परंतु कई बहुत जिद करते हैं। तुम कहते अच्छा शांति वन में जाओ, वहां पर लगाओ, वहां बहुत आते हैं, कितने होते हैं कई। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी अभी मर जीवा बने हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये रूहानी अक्षर न कह सिर्फ बाप कही तो भी ठीक है। रूहानी बाप की बजाय केवल बाप तो भी ठीक है, रूहानी अक्षर न कहें। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सब अपने को भाई भाई तो कहते हैं ना, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। सभी को तो नहीं समझाते होंगे। कल भी बाबा ने कहा मैं तो अपने बच्चों को ही समझाता हूँ, दुनिया वालों को बाहर वालों को नहीं समझाता हूँ। इसीलिए कई कहते थे बाबा क्यों बड़ी बड़ी सभाओं में नहीं बोलते थे। आज दुनिया में गुरु महात्मा लोग तो कितनी बड़ी सभाओं में बोलते हैं, भाषण करते हैं, पर बाबा ने कभी बड़ी सभा में भाषण नहीं किया। पर बाबा तो अपने बच्चों से ही बात करते हैं, और यही कहा जैसे बात कर रहे हैं। तो मुरली में भी ऐसे अनुभव थे बाबा हमसे बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सभी को तो नहीं समझाते होंगे। सब अपने को भाई भाई तो कहते हैं, मना सबका पिता एक है ये तो कहते हैं। गीता में भी लिखा हुआ है भगवानुवाच। अब भगवानुवाच किसके प्रति? भगवान के तो सब बच्चे हैं, तो जरूर बच्चों के प्रति ही होगा भगवानुवाच। वो बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं, भाई है। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। सबकी बुद्धि का ताला अभी बाबा कहते खुला हुआ है। दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते जो बाबा समझाते हैं और हम उसका मनन चिंतन करते हैं। ये ख्यालात हमारे ही चलते हैं, क्यों दुनिया वालों का नहीं चलते? क्योंकि इन बातों के लिए उनका बुद्धि का ताला बंद है, पर हमारा खुला हुआ है, तो इसीलिए हम ही चिंतन कर सकते हैं। तो दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते। जिन जिनको संदेश मिलता जाएगा वो स्कूल में आते जाएंगे, भर्ती होते जाते हैं सेंटरों पर, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। अब प्रदर्शनी तो देखी, चलो प्रदर्शनी तो बहुत अच्छी लगी, ज्ञान बहुत अच्छा लगा, अब जाकर कुछ ज्यादा सुने। उनको बताते भी हैं कि हमारा कोर्स होता है प्रदर्शनी के लास्ट हॉल में, यही कहते हैं हमारे यहाँ शिविर होगी 3 दिन की शिविर, आप उसमें आइए। तो वो आते हैं, बहुत आते हैं। तो बाबा कहते हैं अब जाकर कुछ ज्यादा सुने ये कहेंगे। तो पहली पहली मुख्य बात है कि ज्ञान का सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवान वाच, पहले पहले उनको ये पता पड़े कि इनों को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन है। वो सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है, वो तो है ही ट्रूथ, सत्य है, तो सत्य ही सुनाएगा, वो सत्य ही बताएंगे, फिर उसमें और कोई प्रश्न तो उठ ही नहीं सकता है। पहले पहले तो इस पर समझाना है कि हमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। ये राजाई पद के लिए है राजयोग, जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वो पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ा अथॉरिटी है, तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा अथॉरिटी दुनिया का, ज्ञान का सागर परमात्मा, वो एक ही है, वो हमको पढ़ा रहे हैं। तो बाबा के तो और कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वो है पतित पावन, तो जब वो यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे, ऐसे नहीं कि कभी भी आ जाए, अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो क्या अभी उसका टाइम है, तो कैसे पता चलता है कि अभी उसका टाइम है? ये वही महाभारत लड़ाई है, उसके निशानियां दिखाई दे रही है ना, कैसे ये तैयारियां हो रही है, ये वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वॉइसलेस दुनिया होनी है, यह है विशेष दुनिया। ये मनुष्य नहीं जानते हैं कि भारत ही वॉइसलेस था, कुछ भी बुद्धि चलती नहीं है, गोदरेज का ताला लगा हुआ है। एक डबल विदेशी भाई आया मेरे पास, कहते हैं आपके पास गोदरेज का ताला है? बाबा गोदरेज का ताला का वर्णन करते हैं, तो है हमारे पास गोदरेज का ताला, इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, और कोई अगर उसका डुप्लीकेट बनाए ना, बन नहीं सकती है, ऐसी ऐसा वो ताला है। तो भगवान भी गोदरेज, गॉड आकर के ताला खोलते बुद्धि का, और कोई खोल नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं, तो यहाँ जब गोदरेज वाले आए थे तो उन्होंने उनको बताया कैसे भगवान भी आपको याद करता है, गोदरेज गोदरेज, उनको बहुत खुशी हुई, और सचमुच वो गोदरेज का ताला बांट के गए, वो हमको भी दिया था। तो गोदरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है, इसलिए उनको ही ज्ञान दाता दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, ये किसको भी पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं, ये ब्रह्मा बाबा के लिए समझ लेते हैं कि ये इनको पढ़ा रहा है, तब टीका करते हैं, थोड़ा विरोध भी करते हैं, थोड़ा आर्ग्यू करते हैं, हाँ पर ये तो सुना ही नहीं रहा, बाबा कहते हैं मैं तो निमित्त हूँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए टीका करते हैं, कुछ न कुछ बोलते हैं। इसीलिए पहली पहली बात ही ये समझाओ कि कौन यहाँ ज्ञान दे रहे हैं। इसमें लिखा भी हुआ है शिव भगवान वाच, वो तो है ही ट्रुथ, बाप समझाते हैं मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ इन शालिग्रामों को पढ़ाने। बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये शिक्षा अभी तुमको बेहद के बाप से मिल रही है, वही सृष्टि के रचयिता हैं। पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं, तो बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, तो पहले पहले उसका ही परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है, तो फिर परिचय देना है। कई तो मुन जाते हैं, उनको कहो ना परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है। अब इतना बड़ा अक्षर सुनकर ही मुन जाते हैं, क्या संबंध है पता ही नहीं। फिर उनको कहते आप ही तो कहते हो परम पिता, तो पिता तो अब आप खुद ही बोल रहे हो, तो क्या संबंध है ये पता नहीं कैसे कहेंगे, तो पिता है ना। तो उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है, वो है ही सत्यम। नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं, तो बच्चे जानते हैं कि बाप सत्य है, बाप ही सच खंड बनाते हैं। तो नर से नारायण बनने यहाँ आते हो, बैरिस्टर के पास जाएंगे ना, जाएंगे तो समझेंगे ना कि हम बैरिस्टर बनने आए हैं। जिसके पास जाते हैं उस जैसा बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, कई निश्चय करते भी हैं, भगवान पढ़ाते हैं ये कहते भी हैं, निश्चय भी करते हैं, फिर क्या हो जाता है, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, दूसरों की सुनी सुनाई बात में आ गए, अरे कोई भगवान भगवान नहीं पढ़ाता है, वहां छोड़ो, इन सब बातों में नहीं जाओ। तो बाबा कहते फिर संशय बुद्धि बन जाते हैं, तो कई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, तो उनको फिर सब मनुष्य कहते हैं। अब किसी के बहकावे में चलो संशय बुद्धि बन गया, अब संशय बुद्धि बन करके वो पढ़ाई छोड़ दी उसने, तो फिर और ही उसको मनुष्य कहते हैं, तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते, फिर भगवान को छोड़ा क्यों, भगवान को छोड़ के आ गए तुम, नहीं तो कहा था भगवान पढ़ाते हम, फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो। तो संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं, भगवान कोई छोड़ दे तो क्या हालत होगी, उसका हाथ ही छोड़ दे तो कहाँ जाएगा, दुर्गति में ही जाएगा। तो बाबा कहते हैं संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं, कोई न कोई विकर्म करते हैं, फिर तब भागंती हो गए तो माया तो इंतजार कर रही है कि मेरा ग्राहक भगवान के पास चला गया, क्यों गया, वापस बुला लिया, तो फिर विकर्म कराएगी माया। तो कोई न कोई विकर्म करते हैं, भगवानो वाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे, जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। बहुत बड़ी बात है ये, जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात, तुम जाकर वहाँ राजाई करेंगे, बाकी जो भी आत्माएं हैं, तुम बच्चे जो बाप से पढ़ रहे हो, टीचर से पढ़ रहे हो, तुम राजाई करेंगे, और बाकी जो भी आत्माएं हैं वो अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस अपने घर चली जाएगी। ये कयामत का समय है, कयामत का समय सब धर्मों में है, केवल बाबा नहीं कहते हैं, सब बाइबल में है, कुरान में है, गीता में भी है, हाँ सब। तो इसीलिए ये कयामत का समय है, कयामत माना जब सबके हिसाब किताब चुकतू होने का समय आता है, सबको वापस जाने का समय आता है, वो कयामत का समय, ये कयामत का समय है। अब ये बुद्धि कहती है कि सतयुग की स्थापना जरूर होनी है, पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, उनको फिर अपना पाठ रिपीट करने फिर आना होगा अपने समय पर। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन वन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए, पुरुषार्थ करते रहते हो। मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना, सब समझेंगे, अभी भी हम कहते हैं हम भारत, हाँ भारतवासी है तुम, तो जैसे मालिक है, तो मालिक तो सब अपने को समझेंगे, सतयुग में भी समझेंगे हम सब, तो मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है, सब कहेंगे, नागरिक कहेंगे, हम भारत के मालिक है ना, हम अधिकारी हैं, प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत, तो हमारा माना हमारा है तो मालिक है। बड़े तो बड़े, बड़े ते बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हमारा भारत। तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नरकवासी हैं, अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए ये राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे, ये अभी ज्ञान आया है। वो लोग जो सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, वो है शास्त्रों की अथॉरिटी, उनको कहेंगे शास्त्रों की अथॉरिटी। तो बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, ये सब नीचे उतरते आए हो, क्योंकि भक्ति मार्ग है। बाप कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तभी मैं आऊंगा, तभी आते हैं, भक्ति मार्ग पूरा होने का समय आता है तब बाबा आते हैं। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। अब भक्ति पूरी होने पर हो तब तो भक्ति का फल दे रहे ना, बीच में तो आएंगे नहीं, अभी तो और भक्ति चलनी है, तो जब पूरी हो तब भक्ति का फल देने आते हैं बाप। तो भक्ति का फल देना है, मेजॉरिटी तो भक्तों की है, सब पुकारते रहते हैं ओ गॉड फादर, भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। भले चाहे नास्तिक भी हो ना, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई तो हे भगवान जरूर उसके मुख से निकलता है, भले और बातों में नास्तिक होगा, मैं नहीं मानता हूँ। तो बाबा कहते हे भगवान जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है, तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर हे भगवान ये अक्षर नहीं निकलेंगे। मनुष्य को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है, द्वापर युग से ही कहते हैं जैसे दुख शुरू हुआ तो दुख में सिमरण सब करें, तो दुख शुरू हुआ तो भगवान को याद करना शुरू किया, तो हे भगवान कहना भी शुरू किया। तो मनुष्य को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। तुम जानते हो वो तो हमारा बाप है, तुमको हे बाबा थोड़ी कहना है, बाप से तो तुमको वर्षा लेना है। तो पहले ये निश्चय है कि हम बाप से वर्षा लेते हैं, बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं, ये तो सच्चा बाप है ना। शिव बाबा सच्चा बाप है, ऐसे नहीं कैसे ही ऐसा ही बाप है, सच्चा बाप है ना, तो वर्षा जरूर देंगे। तो बाप जानते हैं ये हमारे बच्चे हैं, जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूँ। क्या करते हैं बाबा, हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप ने समझाया है आत्माएं वहाँ शांति धाम और सुख धाम में रहती है। सुख धाम को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी देवताएं है ना, और वो है स्वीट होम सत्युग, संपूर्ण निर्विकारी देवताओं का धाम और परम धाम है सुख स्वीट होम। तुम जान गए हो कि हमारा होम वो है, घर वो है। हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पाठ बजाने, हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं है, वो एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं, जो हद के ड्रामा में पार्ट बजाते हैं या नाटक में, तो अपने लौकिक घर से आते हैं पार्ट बजाए या फिर वापस उस घर में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं, सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदल कर पार्ट बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, वो हम वहाँ हम फिर वापस जाएंगे। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आते हैं तब ही बाप आकर सभी को ले जाएंगे। इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। दुख हरता सुख करता है तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? तब दुख हरता सुख करता है तो जरूर मनुष्य सब इतने सारे अभी है, अभी तो सुख है नहीं तो कहाँ जाएंगे? जरूर विचार करो। पति पावन को बुलाते हैं, किस लिए बुलाते हैं? पतित पावन को किस लिए बुलाते हैं? महाकालेश्वर मंदिर में जाओ, महाकाल को पुकारते रहते हैं। तो महाकाल को पुकारना या पतित पावन को बुलाना, इसका मतलब क्या? इसके लिए बाबा कहते अपनी मौत के लिए, क्योंकि महाकाल क्या करेगा? सबको काल से मुक्त कर देगा ना, मौत लाएगा, घर ले जाएगा। तो अपनी मौत के लिए बुलाते हैं। और पतित पावन भी कहते हैं तो पतितों को पावन बनाएगा तो इस पतित दुनिया में थोड़ी छोड़ देगा, जब पावन बन गए बच्चे तो जरूर घर ले जाएगा। तो बाबा कहते हैं किस लिए बुलाते हैं पतित पावन को? अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं घर चलो। ये सब मुक्ति को ही मानने वाले, बाकी दुनिया में तो अभी कोई भी जीवन मुक्ति तो पता ही नहीं है, कहेंगे मैं मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। ये सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है, विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। वास्तव में हठ योगी तो राजयोग जानते ही नहीं है। अपने को आत्मा समझ, बाप से सब संबंध जोड़ो, उनको याद करो, ये राजयोग बाबा कहते वो जानते ही नहीं, वो तो हठयोगी जानते हैं। उनका योगी रॉन्ग है, भले राजयोग कहते, बाबा कहते वो सिखाते नहीं, उनका योगी रॉन्ग है। इसलिए तुम्हें जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है। मनुष्य को सन्यासियों की कफनी देख, मनुष्य को सन्यासियों की कफनी देख उनको कितना मान देते हैं, है ना? जाएंगे विदेश में भी जाएंगे तो गिरवे कपड़े पहन के जाते हैं तो लोग उनको कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देख उनको मानते हैं। बौद्ध भिक्षु होते हैं ना, वो भी गिरवे कपड़े ही पहनते हैं, तो उनको भी देख करके बहुत विदेश में भी बहुत लोग उनको मानते हैं। अब सन्यासी तो बाद में होते हैं, जन्म से थोड़ी होंगे, सन्यासी तो बाद में होते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते हैं। जब पाप बढ़ता है तब सन्यास धर्म होता है। अब ये भी एक राज है, जब धर्म पिता आता है धर्म की स्थापना के लिए, उस समय कोई उनका सन्यास मार्ग शुरू नहीं होता है। ये तो बाद में वो उस धर्म को और थमाने के लिए फिर सन्यास शुरू होता है। जैसे बाबा देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो देवताएं जब है तो कोई सन्यासी तो है नहीं वहां, लेकिन द्वापर के बाद फिर जब आदि शंकराचार्य आता है तब उसके बाद सन्यास धर्म शुरू होता है। तो बाबा कहते हैं जब पाप बढ़ता है तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। शुरू में तो वो आत्मा ही ऊपर से आती है और वृद्धि होती जाती है, उनकी संख्या आती है। शुरू में सन्यास सिखला कर क्या करेंगे? अब शुरू में सन्यास सिखला दिया फिर तो वृद्धि कैसे होगी? पहले तो गृहस्थी होंगे ना, तो धीरे धीरे जब उसमें भी बहुत विकार आ गया तो फिर उसमें सन्यास मार्ग शुरू हुआ। हर धर्म में भी शुरू में सन्यास सिखला कर क्या करेंगे? सन्यास होता है बाद में हर धर्म में। ये भी यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं। क्रिश्चियंस में भी बहुत है जो सन्यासियों का मान रखते हैं। कफनी की जो पहरवाइश है वो बाबा कहते हैं हठ योगियों की पैरवाइश है। कफनी पहनते हैं, गिरवे कपड़े पहनते हैं, वो हठ योगियों की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, तुम कोई कफनी पहन करके कोई घर बार छोड़ते हो तो ऐसी तो बात है नहीं। न कोई सफेद कपड़ों का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है,
बंधन भी नहीं है। कई माताएं अब घर में जाएंगे तो जरूर रंगीन कपड़ा पहनेंगे, न मना तो नहीं करेंगे, हम मैम तो घर में भी सफेद पहनेंगे, अगर घर में कोई मानते नहीं है तो रंगीन तो पहनना पड़ता है। तो बाबा कहते तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, न कोई सफेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफेद अच्छा है। वैसे भी भारत की जो ड्रेस है, गर्मियों की ड्रेस तो धोती कुर्ता है ना एकदम, और वो भी सफेद पहनते हैं गर्मियों में, अच्छा रहता है। काले पहनेंगे गर्मियों में तो वो सारा हीट पकड़ लेता, सफेद कपड़ा तो रिफ्लेक्ट करता है गर्मी, तो इसीलिए हल्का भी रहता है, अच्छा भी लगता है। तो बाबा कहते सफेद अच्छा है, तुम भट्ठी में रहे हो तो ड्रेस भी ये हो गई। शुरू में ही बाबा ने सफेद ही पहनाया तो ये ड्रेस हो गई। आजकल सफेद बहुत पसंद करते हैं, मनुष्य मरते हैं तो भी सफेद चादर डालते हैं। तुम भी अभी मर जीवा बने हो तो सफेद ड्रेस अच्छी है। सब जीते जी मरे हुए बैठे हैं ना सब, तो बाबा कहते सफेद ड्रेस अच्छी है। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है, दो बाप हैं, ये बातें समझने में टाइम लेते हैं, प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में होता है एक बाप, इस समय तो तुमको तीन बाप है, तीन बाप है, क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वो भी तो बाप है ना सबका, प्रजापिता ब्रह्मा लौकिक बाप भी है। अच्छा, अब तीनों बाप से ऊंच वर्षा किसका, तीनों बाप है तीनों में ऊंच वर्षा कौन देता है, तो किसका, तो तुम कहेंगे निराकार शिव परमात्मा। तो शिव बाबा तो निराकार है और ये है प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो बाप कहते हैं मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, क्योंकि वो तो है ही आत्माओं का पिता ना। पर ब्रह्मा क्यों ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, क्योंकि आदि पिता है, फिर उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा, फिर हम कहेंगे भाई अंत में या अंतिम जन्म में उस आदि पिता के कितने वंशावली हो गई, तो इसलिए इस हिसाब से ग्रेट 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 ग्रैंडफादर पर। अभी तो बाबा कहते तुम डायरेक्ट बनते हो, ब्रह्मा के भी डायरेक्ट बच्चे बनते हो। तो बाबा कहते हैं मुझ शिव को तो तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं तो सभी का बाप हूँ। और अभी ब्रह्मा बाबा भी हमारा डायरेक्ट बाप है, शिव बाबा तो है ही डायरेक्ट बाप, मैं सभी का बाप हूँ, ये है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम हो गए सब भाई बहन। अब बाबा ने और व्यवहारिक बात बहुत सुंदर बताई है, जो सबके लिए जो परिवारों में रहते हैं उनको तो जरूर ऐसा ही करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अब ये हो गए सब भाई बहन, भर स्त्री पुरुष है, लौकिक में वो युगल है, पति पत्नी है, परंतु बुद्धि से जानते हैं हम भाई बहन है, बाप से वर्षा लेते हैं। अब भाई बहन आपस में क्रिमिनल एसॉल्ट कर न सके, अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। तो बाप कहते हैं तुम हमारा बच्चा बन फिर मुंह काला करते हो। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी तो मुंह देना है ना, तोड़ निभाना है। अब लौकिक बाप को तो तुम बाप ही कहेंगे ना, अब बाप और बेटा दोनों कहीं जा रहे हैं, बच्चा तो ज्ञान में है पर पिता ज्ञान में नहीं है, मानो तो कहीं थोड़ी कहेगा ये मेरा भाई है, वो क्या कहेगा, हाँ मेरे पिता है, क्योंकि कहेगा मेरा भाई है तो कहेंगे ये ब्रह्मा कुमारियों का जादू लग गया, सबको कहता है पिता को भी भाई कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तोड़ निभाना है, तो लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, ऐसे थोड़ी उसको उस समय भाई कहेंगे, उनको तो तुम भाई कह नहीं सकते हो, ऑर्डिनरी वे में बाप को तो बाप ही कहेंगे, बुद्धि भी है कि ये हमारा लौकिक बाप है, तो फिर हम ऐड करते हैं, ये मेरी लौकिक माँ है, मेरे लौकिक पिता है, तो लौकिक ऐड कर दिया तो बड़ी बात नहीं, परंतु ये थोड़ी कहेंगे ये मेरा भाई है। तो बुद्धि में ये हमारा लौकिक बाप है, ज्ञान तो है ना कि हाँ ये आत्मा रूप में तो भाई ही है। ये ज्ञान बड़ा विचित्र है, आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, है ना, आजकल तो सबके नाम, पति का भी नाम ले लेते, पहले तो कभी नहीं लेते थे नाम, आजकल तो मॉडर्न फैशन है, पति का भी नाम लेते हैं, आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो अपने पति को या पिता को, हाँ विजिटर के आगे आप उनके सामने आप भाई कह दो, तो वो समझेंगे इनका तो माथा खराब हो गया है माथा खराब हुआ है। इसलिए बड़ी युक्ति चाहिए, बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा तो गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इसमें बड़ा युक्ति से चलना है, लेकिन एक दो को रिगार्ड अच्छा देना है। अब भाई है तो अगर हम मानते हैं, लेकिन बाबा कहते रिगार्ड तो देंगे ना, लेकिन एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है, लौकिक से भी तोड़ निभाना है, बुद्धि चली जा चाहिए, चली जानी चाहिए ऊपर, तोड़ निभाना है लेकिन बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर कि ये सब आत्माएं हैं। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी नीचे को, बाकी चाचे को चाचा तो कहेंगे ना, चाचा को तो चाचा कहेंगे ना, कई बार ऐसे आते ना लौकिक में, समझो उनका मामा आया, अब उसने मामा कहा तो सब ने मामा कहना शुरू कर दिया, सब उनको मामा कहेंगे, सब उनको चाचा कहेंगे, एक बार किसी ने कहा है तो बाप को तो बाप कहना पड़ेगा ना। जो बीके नहीं बने हैं तो वो भाई बहन तो नहीं समझेंगे ना, जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे, हाँ आश्चर्य खाएंगे क्या कहते हैं, वो तो सब चमकेंगे। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, बाप तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं, तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में, हमारा वो बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहन हैं। बाकी संबंध में तो बहू को बहू ही कहेंगे, सासू को सासू ही कहेंगे, आजकल तो बहू भी सास को सासू नहीं कहती है, मम्मी कहती है, पिताजी पति कहता है तो वो पत्नी भी फिर वही कहती है, पर फिर भी कहेंगे ना सासू है, सास सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़ी कहेंगे, आते तो दोनों हैं, अभी सास और बहू दोनों समझो ज्ञान में चलते हैं तो है, तो दोनों आते हैं आत्मा आत्मा तो रूप में, चलो भाई भाई है, पर ये थोड़ी कहेंगे ये मेरा भाई है, सास को ये मेरी बहन है या बहू है, तो बहू को तो बहू कहेंगे ना, बहन थोड़ी कहेंगे, आते तो दोनों हैं। घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना पड़ेगा, बहुत बाबा कहते हैं व्यवहार में तो युक्ति से चलना पड़ेगा, लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है, नहीं तो वो लोग कहेंगे ये तो पति को भाई कहते हैं, सासू को बहन कह देते हैं, ये क्या सीखते हैं वहाँ सासू को बहन कह देते हैं, पति को भाई कह देते, क्या सीखते हैं वहाँ। ये ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और और कोई नहीं जानते, कहते हैं ना ईश्वर के लिए भी क्या कहते हैं, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, तो फिर बाबा के बच्चों की भी गत मत बच्चे ही जाने, इसलिए दुनिया वालों को तो नहीं समझ में आता क्या ये भाषा है। अभी तुम उसके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गत मत भी तुम ही जानो, शिव बाबा की भी गत मत अब तुम जानते हो, अपनी गत मत तो जानते ही हो, बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, कहाँ कोई मुझे नहीं। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले ये समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है, अब बताओ वो कौन है, कौन है भगवान? निराकार शिव या श्री कृष्ण? शिव जयंती के बाद फिर आती है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं। तो बच्चों की बुद्धि में आया है ना, जब तक शिव परमात्मा न आए शिव जयंती भी बना न सके। जब तक शिव आकर श्री कृष्णपुरी स्थापन न करे तो श्री कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। इसलिए सबसे बड़ी जयंती किसकी है? हाँ, शिव बाबा की जयंती है। श्री कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं, परंतु समझते थोड़ी हैं। श्री कृष्ण तो प्रिंस था, तो जरूर सत्युग का प्रिंस होगा ना, देवी देवताओं की राजधानी होगी। सिर्फ एक श्री कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी ना, पूरी राजधानी होगी ना श्री कृष्ण के साथ, जरूर कृष्णपुरी होगी ना, पूरी पूरी बना पूरा संसार जैसे श्री कृष्णपुरी होगी ना। कहते भी हैं कृष्णपुरी और फिर कहते हैं कंसपुरी, तो कृष्णपुरी और कंसपुरी, तो ये है कंसपुरी। कंसपुरी खत्म हुई फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई। होती तो भारत में है, नई दुनिया में थोड़ी ये कंस आदि हो सकते हैं। कंसपुरी कहा ही जाता है कहाँ को? कलयुग को। तो कलयुग है कंसपुरी। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े होते हैं। देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की, कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, दैवी संप्रदाय कहो, बात एक ही है, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। बाकी न देवताओं और न असुरों की लड़ाई लगी, न कौरवों और पांडवों की ऐसी लड़ाई लगी। तुम तो रावण पर जीत पाते हो, तो बाप कहते हैं इन पांच विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। अब इसमें कोई लड़ना तो है नहीं, कोई हथियार पवार लेकर लड़ना तो नहीं है। लड़ने का नाम ले तो फिर हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है, परंतु कैसे पानी है रावण पर? नॉन वायलेंस से, अहिंसा से, अहिंसा से जीत पानी है। हाँ, उसके लिए कोई हथियार पवार नहीं चाहिए रावण पर जीत पाने लिए, अहिंसा से, नॉन वायलेंस से। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं, लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। तो बाप कहते हैं तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है, तो बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पति पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बनेंगे, ऐसे नहीं बनेंगे। बाप से बुद्धि योग लगाओ, वो पतित पावन है, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, अब इसने लड़ाई की तो बात ही नहीं है। तो जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे, क्या होगा उनको? वही बाप से वर्षा पाएंगे। कौन पाएंगे बाप से वर्षा? जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे वही बाप से वर्षा पाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, तो क्या सार बुद्धि में रखेंगे? पहला, भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है, बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। दूसरा, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। वरदान, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो, तो रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए ये कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा। समय तो आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो तो समय अपने आप संपूर्ण बना देगा, ऐसे नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आते हैं तो समय प्रमाण जाएगा, वो अलग बात है, वो समय प्रमाण वो विघ्न जाएगा, धीरज रखना होता है। हाँ, कहते हैं टाइम इज अ ग्रेट हीलर, समय उसको अपने आप ठीक कर लेता है। तो कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। नहीं तो समय मालिक बन गया ना, उस समय ने आपको बदला, लेकिन आप पहले से ही बदल जाओ तो समय आपके अधीन हो गया तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी, वो समय हुआ ना, समय के कारण। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। अव्यक्ति शारे, इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो के अंतर्गत जब तक कर्म इंद्रियों का आधार है तो कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध। जीवन मुक्त अवस्था अर्थात सफलता भी ज्यादा और कर्म का बोझ भी नहीं। जो मुक्त है वो सदा ही सफलता मूर्त है, जो मुक्त है वो सदा ही सफलता मूर्त है। जीवन मुक्त आत्मा सदा फलक से कहेगी, क्या कहेगी फलक से जीवन मुक्त आत्मा, कि विजय निश्चित है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा। अठारह जनवरी की भी जोरदार तैयारियां हो रही है। ओम शांति भवन को भी देखो, बहुत अभी सजा रहे हैं, इतने ढेर आएंगे 18 जनवरी पर। आई विल अनाउंस डबल फॉरेनर्स प्रोग्राम टुडे। दिस मॉर्निंग 10:30 टू 11 मेडिटेशन एंड 11 टू 12:15 सेशन विद सिस्टर गोपी। सिस्टर गोपी इज गोइंग टू गिव क्लास ऑन द टॉपिक एक्सपीरियंसिंग माई अल्टीमेट स्टेज in the meditation hall of Gyan Sarovar, 11 to 12:15 session with Gopi Ben, experiencing my ultimate stage. And in the evening, on the afternoon, double foreigners in Gyan Sarovar will come to Pandav Bhavan, and those who are first timers, they will go around the four pilgrimage places, and the rest at 2:30 they will come. But then 3:30 they will those who are already many years in Gyan, they will all go to Baba's rock. So first timers will come from Gyan Sarovar and little bit earlier, but 3:30 p.m. buses will come to Pandav Bhavan for Baba's rock, and from here 4:30 they will leave for Baba's rock from Pandav Bhavan main gate 4:30, and then after that go back to Gyan Sarovar. So you can go to Baba's rock this afternoon, be at the gate by 4:30 p.m. Om Shanti.
ओम शांति। आज सतगुरुवार है, हम सबके मन में प्यारे प्यारे बाबा के प्रति प्यार, बाबा से अमृत वेले से लेकर मीठी मीठी रूहान कर रहे हैं। बाबा भी बच्चों के प्यार मीठी मीठी रूहान को भी सुनते और उसका रिस्पांस भी करते हैं। बाबा का बच्चों से बहुत प्यार है, और खास करके अभी अव्यक्ति मास चल रहा है, अव्यक्ति मास में बच्चे बाबा से बहुत ही प्यार भरी बातें रूहान करते हैं। बाबा भी बच्चों के स्नेह में सदा खोए रहते हैं, और आज तो हम सब मिलकर के बाबा के पास वतन में जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे, और उसके बाद आप सबको 5 लाइन में अमृत मिलेगा। 1 लाइन भाइयों की होगी, 1 लाइन फॉर डबल फॉरन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, दैट विल बी फ्रॉम ब्रदर्स साइड, and those all the double foreign sisters and brothers, raise your hand, all the double foreign sisters and brothers will get nectar from Shiluben. They will come to brother's side, aur 3 lines hongi behno ki, unhe amrit milega, aur uske baad aap sab ka nasta ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में है। जो भाई बहने शांतिवन से आए हाथ खड़ा करें। अच्छा, जो भी शांतिवन से आए हैं, और अन्य जो भी, हाथ नीचे कर दो, अन्य जो भी भाई बहने हैं उनका सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन ऊपर के डाइनिंग हॉल में होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं डाइनिंग हॉल नीचे के डाइनिंग हॉल की तरफ थोड़ा कारोबार चल रहा है, इसलिए सबका नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में होता है, वहां पर ही सबको करना है, नीचे किसी को भी खड़ा नहीं होना है। तो आज का जो भोग है हम सभी मिलकर के बाबा को लगाएंगे, विशेष कई आत्माओं के निमित्त भी होता है, खास बाबा के बच्चे कोई विशेष का भोग है, सबके लिए ब्रह्मा भोजन स्टाइल ही आज का भोग है, सब प्यार से ही स्वीकार करेंगे। अभी हम सभी बाबा को भोग स्वीकार कराने के लिए वतन में जाएंगे, और उसके बाद बाबा जो सुनाएंगे सुनेंगे, और उसके बाद 5 लाइन में अमृत होगा, 1 लाइन भाइयों की, 1 लाइन फॉर डबल फॉरन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बाकी 3 लाइनें बहनों की होंगी। ओम शांति।
तेरी याद अमृत पीते हैं, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद।
ओम शांति। आज
सत गुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची, दूर से देखती हूं कि एक बहुत सुंदर फूलों का बगीचा है और दूसरी तरफ क्या देख रही थी, कुछ एंजल्स उस बगीचे को देख भी रहे थे और चारों ओर वो एंजल्स चक्कर लगाते हुए फूलों को एकत्रित करके गुलदस्ता, माला और कई प्रकार के डिजाइन के उनके हाथ में फूलों की सजावट की ऐसी टोकरियां थी। कुछ समय के बाद बाबा उनके सामने आए। बाबा उस फूलों के बगीचे को देख करके मुस्कुरा रहे थे और जैसे ही फूलों के सामने बाबा आते थे वो फूल ऐसी खुशी में लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ सेकंड के बाद उन सब फरिश्तों ने बाबा को माला, गुलदस्ते और फूलों के सुंदर सुंदर टोकरियां बाबा के सामने रखी। बाबा ने उनसे पूछा, बच्चे ये क्या है? तो सब के सब एंजल्स बहुत मुस्कुराते हुए बाबा को कहते हैं, बाबा ये आप सबके, ये आपके सब राइट हैंड्स बच्चे हैं जो यज्ञ की सेवा में सूक्ष्म स्थूल संकल्प से इस सेवा में और विश्व को परिवर्तन करने के कार्य में नियमित बने हुए हैं। तो वो एंजल्स देख करके उन फूलों को भी मुस्कुरा रहे थे और धीरे धीरे उन फूलों से बाबा के अनेक बच्चे इमर्ज होने लगे। बाबा देख करके खुद खुश भी हो रहे थे। बाबा ने कहा ये शिव बाबा के बगिया के सुंदर फूल हैं। शिव बाबा ने जो अपना कार्य बाप और बच्चों के द्वारा कराने की जिम्मेवारी दी है, ये फूल बच्चों को देखकर बाप दादा भी बहुत खुश भी हैं और बच्चों के पुरुषार्थ से भी बाबा को खुशी है। फिर वो एंजल्स क्या कहते हैं सब बच्चों को देखकर कि कब तक रुकेंगे, कब तक अपनी नई दुनिया का दृश्य सामने आएगा, कब हम जाकर के एक साथ वहां राज्य करेंगे। तो वो मुझसे प्रश्न पूछ रहे थे। बच्चे मुस्कुराते हुए कहते हैं बाबा चलना तो है ही, करना तो है ही। फिर बाबा ने कहा चलना है करना ही है, लेकिन समय क्या बताए, समय की तारीख बताओ। तो सब एक दूसरे का मुंह देखते हैं और बाबा को कहते बाबा होना तो है, हो ही जाएगा। इसलिए बाबा ने फिर बच्चों को कहा एक तरफ बाप को बच्चों के पुरुषार्थ सेवा पर नाज भी है, दूसरी तरफ बच्चे बीच बीच में ये जो संकल्प करते हैं कि होना है हो जाएगा वो तो ड्रामा अनुसार निश्चित है ही, लेकिन उसमें जो बच्चों का विशेष दृढ़ संकल्प है वो ही उस कार्य को संपन्न कर सकेगा। तो फिर बाबा उनसे पूछा बच्चों से बच्चे क्या दृढ़ संकल्प किया है। फिर बच्चे एक दूसरे का मुंह देखते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चों को अभी समय के अनुसार एक तो कई प्रकार के जो बंधन बच्चों को बार बार बुद्धि को खींचते हैं उन बंधनों से अपने को हल्का करना। वो बंधन में बाबा ने तीन प्रकार के बंधन दिखाए। एक बंधन ऐसा था कि स्वयं का स्वयं के साथ खुद ही खुद कुछ न कुछ संकल्प उत्पन्न करके कुछ न कुछ ऐसी रस्सियां कहें या सूक्ष्म तारे हैं वो बना लेते हैं, उससे निकल नहीं पाते हैं। बाबा ने कहा इस बंधन को काटने का एक ही रास्ता है बिंदी। फिर दूसरा कहा कि बच्चे अभी तक माया के आकर्षित रूप को पहचान नहीं पाए हैं, दूसरों की बातों में प्रभावित होकर के कभी कल्याण की भावना, कभी उनको पता ही नहीं पड़ता है कि वो किस प्रभाव में बह रहे हैं, तो धीरे धीरे वो बंधन उनको जकड़ लेता है। और तीसरा बंधन के लिए बाबा ने कहा कि बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि मैं बहुत कुछ करूं, मेरा नाम हो, तो नाम मान और शान के लिए जो करते हैं पुरुषार्थ उसमें वो बंधन और ज्यादा मजबूत होता है, उससे निकलना मुश्किल होता है। तो बाबा ने कहा बच्चों को विशेष ये ध्यान रखना है कि निमित्त भाव बाबा साथी है, बाबा का कार्य है। और बाबा ने कहा कि अपने अंदर की अवस्था को एकदम फुल स्टॉप देकर के फरिश्ता स्वरूप धारण करें, तो ये जैसे लास्ट में ब्रह्मा बाप ने पुरुषार्थ करके दिखाया ऐसा ही न्यारे प्यारे होकर के सेवा और पुरुषार्थ करते रहे और बार बार बिंदी लगाने का पुरुषार्थ करेंगे तो संपन्नता आवेग स्टेज को पा सकेंगे और बाप के साथ नई दुनिया में भी चलने की जो तैयारी हो रही है उसको भी संपन्न कर सकेंगे। फिर तो बाबा सब बच्चों को सामने करके और एडवांस पार्टी के लिए मम्मा दादियां जो भी वरिष्ठ दादाएं हैं वो सब के सब हाथ का सबका हाथ पकड़ करके खूब उनको डांस करा रहे थे। कहा कि समय हमें संपन्नता की ओर ले जा रहा है और सब बच्चे भी इसी पुरुषार्थ में हैं, जल्दी ही ये कार्य होना है और करना ही है। फिर बाबा ने सबको अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया, खास करके एडवांस पार्टी वाले सबको एक एक फूल दे रहे थे तो सब मुस्करा रहे थे। तो मैंने कहा आप ये फूल क्यों दे रहे हो, तो कहने लगे आज बाबा ने सब बच्चों को वतन में बुलाया है, हर एक बच्चे के अंदर कई विशेषताएं हैं और फूलों के समान सदा फलते फूलते रहे तो वह उन्हें सदा फलते फूलते आगे बढ़ने के लिए ये फूल देकर के उन्हें उत्साहित कर रहे हैं। फिर बाबा को बताया कि जिन बच्चों के निमित्त भोग था बाबा ने उन सबको भी इमर्ज करते हुए दृष्टि देते भोग स्वीकार कराया और सबको याद दिया ओम श्री।